रेडियो तेहरान के सम्मानीय श्रोता जहरा जैदी और साथियों का सलाम स्वीकार करें। प्रिय श्रोता मित्रों, कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र कुरान के सूरह लुकमान की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से किया जा रहा है। कारी हैं श्री मुस्तफा इस्माइल।
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। लुकमान ने कहा, हे मेरे बेटे, यदि वो कर्म राई के दाने के बराबर भी हो, फिर वो किसी चट्टान के भीतर हो या आकाशों या धरती में, ईश्वर उसे प्रलय में सामने ले आएगा। निसंदेह ईश्वर सूक्ष्मदर्शी और जानकार है। हे मेरे बेटे, नमाज कायम करो और भलाई का आदेश दो और बुराई से रोको, और जो भी मुसीबत तुम पर पड़े उस पर धैर्य करो। निश्चय ही ये बड़े साहस का काम है। और लोगों के सामने घमंड से अपना मुंह टेढ़ा न करो और न धरती पर अकड़ कर चलो। निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, खुरदाद की 27, ज़िकादा की 6 और जून की 17 तारीख। प्रोग्राम में पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद अनमोल बातें पेश होंगी, जिसके बाद आप सुनेंगे राजनीतिक चर्चा और फिर आज की बात प्रोग्राम पेश होगा और सभा का अंतिम प्रोग्राम है सफल महिलाएं। दोस्तों, इंसान की सोच का इंसान के व्यक्तित्व पर जो असर पड़ता है, इस बात को आज वैज्ञानिक मान रहे हैं कि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। हमारा पूरा जीवन हमारी सोच का नतीजा होता है। इसी विचार को हज़रत अली सलाम पेश करते हैं। आप फरमाते हैं कि अपने सोच की ओर से सावधान रहो कि तुम्हारी सोच बातचीत का रूप अख्तियार करती है। अपनी बातचीत की ओर से सावधान रहो कि वो आदत का रूप अख्तियार करती है। अपनी आदत की ओर से सावधान रहो कि वो चरित्र का रूप अख्तियार करती है। अपने चरित्र की ओर से सावधान रहो कि वो व्यक्तित्व का आधार बनती है, और अपने व्यक्तित्व की ओर से सावधान रहो कि वही तुम्हारा भविष्य है। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribi.ir। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098903506592। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। और अब आप विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि देश की जनता दुश्मन को मायूस करते हुए एक बार फिर चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ईरान और भारत ने रोटा वायरस का टीका संयुक्त रूप से बनाने का समझौता किया है। इराक के हिजबुल्ला संगठन ने कहा है कि इसराइल से होने वाली लड़ाई में फिलिस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोका कोला को $4 अरब का भारी नुकसान हुआ। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद अली गुम्मी से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि देश की जनता आगामी शुक्रवार को चुनावों में भाग लेकर व्यवस्था को सम्मान प्रदान करेगी। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने बुधवार को अपने टेलीविजन संबोधन में कहा कि लगभग 48 घंटों के बाद देश में एक निर्णायक घटना घटने वाली है। उन्होंने कहा कि वो घटना है राष्ट्रपति तथा नगर एवं ग्राम परिषद के चुनाव। सुप्रीम लीडर ने कहा कि निश्चित रूप से देश का भविष्य एक कालखंड में हर क्षेत्र में जनता की भागीदारी से इंशाअल्लाह बदलेगा। आप लोग चुनावों में मतदान करके हर क्षेत्र में देश के भविष्य को संवारेंगे। इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था में जनता की उपस्थिति को विशेष महत्व है और ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है। हालांकि जनता की उपस्थिति के बहुत से राजनीतिक लाभ हैं, किंतु सबसे अहम एवं मूल विषय जनता की मौजूदगी है। उन्होंने कहा कि इस्लामी लोकतंत्र में एक भाग इस्लामी है जबकि दूसरा भाग लोकतंत्र है। अब अगर जनता की उपस्थिति न हो तो फिर इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने आगे कहा कि शत्रु का लक्ष्य यह है कि ये चुनाव इस्लामी गणतंत्र ईरान की इच्छा के अनुसार आयोजित न होने पाए, अर्थात जनता व्यवस्था से दूर हो जाए। इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर ने कहा कि जनता ने सिद्ध कर दिया कि दुश्मन ने जो भी चाहा उसने उसके विरुद्ध किया। ये बात चुनावों के बारे में भी लागू होती है और रैलियों तथा अन्य विषयों पर भी। इस बार भी ईश्वर की कृपा से वैसा ही होगा। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इंशाल्लाह जनता उपस्थित होकर इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नया सम्मान प्रदान करेगी। शुक्रवार को ईरान में राष्ट्रपति नगर एवं ग्राम परिषदों और विशेषज्ञ परिषद की कुछ सीटों के लिए चुनाव होगा।
ईरान के चुनावी कानूनों के अनुसार मतदान से 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है और गुरुवार की सुबह 7 बजे राष्ट्रपति, विशेषज्ञ परिषद और ग्राम व नगर परिषद के चुनाव के उम्मीदवारों का प्रचार अपने अंत को पहुंच गया। शुक्रवार को देशभर से सुबह 7 बजे से राष्ट्रपति, विशेषज्ञ परिषद और ग्राम व नगर परिषद के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा।
राष्ट्रपति रूहानी ने जोर देकर कहा है कि देश में स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए हैं वे अभूतपूर्व हैं। डॉक्टर हसन रूहानी ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले 8 साल में देश में स्वास्थ्य व उपचार के विभाग में जो महान काम हुए हैं वे ईरान के इतिहास में अभूतपूर्व हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में अस्पतालों में 14,000 बेड बढ़ाए गए हैं।
इस्लामी गणतंत्र ईरान और भारत रोटा वायरस का टीका संयुक्त रूप से बनाने और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए सहयोग कर रहे हैं। ईरान के पाश्चर इंस्टीट्यूट और भारत की टीका बनाने वाली कंपनी बायोटेक इंडिया ने एक समारोह में आंतरिक टीकाकरण व्यवस्था के इस्तेमाल के लिए रोटा वायरस के टीके की आपूर्ति और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के समझौते पर दस्तखत किए। ये समारोह ऑनलाइन आयोजित हुआ। दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य रक्षा, इलाज और टीके के संयुक्त उत्पादन के क्षेत्र में संबंध विस्तार में रुचि दिखाई। गौरतलब है कि बच्चे सबसे ज्यादा रोटा वायरस की चपेट में आते हैं। बच्चों में जब इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा दस्त आता है। करीब 5 साल की उम्र होते होते हर बच्चा एक बार इस वायरस की चपेट में आता है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सालाना 5 साल से कम उम्र के 5 लाख बच्चे रोटा वायरस से मरते हैं।
भारत के रक्षा मंत्री ने साउथ चाइना सी के कानूनों के बारे में वार्ता के मामले पर आसियान संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में कहा है कि इस इलाके में अन्य देशों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस को संबोधित करते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि सुरक्षा को होने वाले खतरों का मुकाबला घिसे पीटे तरीकों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने साउथ चाइना सी के विकास पर बल देते हुए कहा कि समुद्री सुरक्षा चुनौतियां भारत के लिए चिंता का विषय हैं और इस संबंध में दक्षिणी चीन सागर में गतिविधियों ने इस इलाके में और इससे आगे ध्यान आकर्षित किया है।
भाजपा के एक विधायक ने गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और स्वरा भास्कर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में कुछ चरमपंथियों द्वारा एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी बॉर्डर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने इन लोगों पर सामाजिक सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से ट्वीट करने का आरोप लगाते हुए इन तीनों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
इराक के हिजबुल्ला संगठन ने फिलिस्तीनियों पर इसराइल के अत्याचार और कुद्स में उसके अतिक्रमण की कार्रवाइयों के जारी क्रम का जिक्र करते हुए इसराइल से निपटने के लिए कुद्स समीकरण में शामिल होने का ऐलान किया है। कुद्स दशकों से प्रतिरोध गुटों के खिलाफ इसराइल की जंग व लड़ाई का केंद्र रहा है। इसराइली शासन के अपराध ऐसी हालत में जारी है कि प्रतिरोध संगठनों के नेताओं ने बारंबार इस शासन को चेतावनी दी है कि कुद्स के खिलाफ अपराध जारी रहने की स्थिति में पूरे क्षेत्र में जंग छिड़ सकती है। दूसरे शब्दों में कुद्स के फिलिस्तीनियों और मस्जिद उल अक्सा के खिलाफ अपराध जारी रहने पर इसराइल के साथ फिलिस्तीनी गुटों की झड़प फिलिस्तीनी गुटों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उसका दायरा बढ़कर प्रतिरोध के मोर्चे तक पहुंच जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में कुद्स की तलवार नामक ऑपरेशन खत्म होने के बाद लेबनान के हिजबुल्ला संगठन के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने अपनी स्पीच में नए समीकरण का ऐलान करते हुए ज़ायोनी शासन को चेतावनी दी है कि अतिग्रहित कुद्स के पवित्र स्थलों पर किसी तरह के अतिक्रमण की स्थिति में क्षेत्रीय जंग छिड़ जाएगी।
इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्पाइकर छावनी को अब एक संग्रहालय के रूप में जाना जाएगा। मुस्तफा अलकाज़मी ने आज उस स्पाइकर छावनी का दौरा किया जहां पर दाइश के आतंकवादियों द्वारा शिया मुसलमानों के 1700 युवाओं का जनसंहार किया गया था। इस छावनी के निरीक्षण के बाद इराक के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको अब एक संग्रहालय के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्थान इराक में होने वाले क्रूरतम जनसंहार का साक्षी है। निर्दोष लोगों का यहाँ पर जो खून बहा उसने इराकियों की अंतरात्माओं को झंझोड़ कर रख दिया।
इराकी जनता देश से अमरीकी फौजियों को निकालने के लिए कमर कस चुकी है। इराक से अमरीकी फौजियों को निकाल बाहर करने के लिए आए दिन इराक में अमरीकी सेना का कारवां निशाना बन रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को दक्षिणी इराक के दीवानिया प्रांत में अमरीकी सेना के कारवां को निशाना बनाया गया जो अमरीकी फौजियों के लिए सैन्य उपकरण लेकर जा रहा था। साबरीन न्यूज के मुताबिक दीवानिया में अमरीकी सेना का कारवां सड़क किनारे लगाए गए बम के धमाके की चपेट में आ गया।
फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी संगठन के महासचिव ने कहा कि हालिया युद्ध में गजा पर जमीनी हमले की जानियों में हिम्मत नहीं थी। जियाद नुखाला ने बैतुल मुकद्दस की तलवार नामक युद्ध में फिलिस्तीनी प्रतिरोध का भरपूर समर्थन करने पर यमन के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कुछ अरब दलों के प्रतिनिधि मंडलों और अहम हस्तियों से मुलाकात में कहा कि हम अपने यमनी भाइयों के आभारी हैं जिन्होंने बड़े बड़े जुलूस निकालकर हालिया युद्ध में फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन किया।
सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यमन के मामले में अपनी जिद से पीछे हटते नजर आ रहे हैं और यमन पर सऊदी हमलों से हुई तबाही का हर्जाना देने पर राजी हो गए हैं। एक सऊदी सूत्र ने दावा किया कि अगर सऊदी सेंटरों पर यमन के जवाबी हमले रुक जाएं और यमन संघर्ष विराम के लिए तैयार हो जाए तो सनआ में यमनी सरकार को हर्जाना देने के लिए सऊदी युवराज तैयार हैं।
दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेहत को जंक फूड पर अहमियत देते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने की सलाह देते हैं। 14 जून को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने से कोका कोला की बोतलें हटाने से इस कंपनी को $4 अरब का नुकसान हुआ। हंगरी में UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप में पुर्तगाल के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मेज पर अपने सामने कोका कोला की दो बोतलें रखी देखी। रोनाल्डो ने कोका कोला की दोनों बोतलें अपने सामने से हटाकर दूसरी ओर रख दी और कैमरे के सामने पानी की अपनी बोतल लहराई और पुर्तगाली जबान में इग्वा कहा, जिसका मतलब पानी है। यही नहीं, उन्होंने दर्शकों से सोडा के बजाय पानी पीने पर बल दिया। इस घटना का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रोनाल्डो के कुछ सेकंड के इस कदम से कोका कोला को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मार्केट में कोका कोला ब्रांड का मूल्य $242 अरब से कम होकर $238 अरब तक पहुंच गया।
चीन ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन सफलता के साथ भेजा है। चीनी स्पेसक्राफ्ट शेंजू 12 3 एस्ट्रोनॉट्स नी हाई शेंग, लू बोमिंग और तांग हांगबू को लेकर स्पेस स्टेशन पहुंचा। ये चीन का अपने स्पेस स्टेशन में पहला अभियान है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अनमोल बातें। दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें में आपका स्वागत है। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने अमेरिका को शैतान बुजुर्ग अर्थात महाशैतान क्यों कहा था, और शैतान व महाशैतान में कुछ अंतर भी बयान करेंगे। स्वर्गीय इमाम खुमैनी कहते हैं, अमेरिका हमारे देश में फिरौनियत करता था, फिरौन की तरह हमारे लोगों के साथ व्यवहार करता था। जमाने के मूसा आए, उन्होंने फिरौन और उसका अनुसरण करने वालों का राजपाट पलट दिया, उसे खत्म कर दिया। इस्लामिक क्रांति यह है। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं, स्वर्गीय इमाम खुमैनी फरमाते थे, अमेरिका महाशैतान है। ये बात बहुत अर्थपूर्ण है। दुनिया के समस्त शैतानों का मुखिया इबलीस है, लेकिन कुरान के अनुसार शैतान केवल लोगों के दिलों में वसवसा डाल सकता है, उन्हें उकसा सकता है और उन्हें गुमराह कर सकता है। इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका लोगों को गुमराह करता है और उनकी हत्या भी करता है और लोगों को भड़काता है, उन्हें धोखा देता है और उनसे दिखावा करता है। दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऐतिहासिक महाआंदोलन पर बहुत ही संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। जब आप इस आंदोलन पर नजर डालेंगे तो हर चीज से अधिक आपको ये दिखाई देगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका बहुत मशहूर वाक्य है कि अपमान की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। امام حسین علیہ السلام نے جو آندولن کیا تھا اس کا مول ادیشی اپنے نانا اور بابا کی امت میں سدھار لانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو آندولن کیا تھا وہ نیتکتا، ششٹاچار، تیاگ و بلیدان اور آدھیاتمکتا کا اتکرشتم آدرش ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ایتہاسک آندولن سے جو سب سے بڑی سیکھ ملتی ہے وہ انیائے کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستوں، میں ہوں رویش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں۔ آج کے کارکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایران میں چناؤ پرچار کے تھمنے، متدان کی الٹی گنتی شروع ہونے اور لوگوں میں چناؤ میں بھاگیداری کے لیے دیکھے جا رہے بھاری جوش کی۔
بھائی صندوق اللہ رائے می دیں بخاطر ایران مون۔
اور پھر بات کریں گے عراق میں رہنے والے ایرانی ناگرکوں میں بھی راشٹرپتی پد کے چناؤ کے لیے ہونے والے متدان میں بھاگ لینے کے لیے دیکھے جا رہے بھاری جوش کی۔
ہر ایک رائے شما مردم۔
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں دلی دنگے معاملے میں ہائی کورٹ سے ضمانت پا چکے آروپیوں کو جیل میں ہی رکھنا چاہتی ہے پولیس۔
دلی کی نچلی عدالت نے ہائی کورٹ سے ضمانت پا چکے چھاتر نیتاؤں
تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 18 جون شکروار کو ایران میں ہونے والے 13ویں راشٹرپتی پد کے چناؤ کی۔ چناؤ پرچار پرسار سماپت ہو چکا ہے، اب لوگوں میں مت پیٹیوں تک پہنچنے اور اپنے مت ادھیکار کا استعمال کرنے کی اتسکتا دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس سمبندھ میں راجدھانی تہران میں جنتا کے بیچ پہنچ کر سحر عالمی نیٹورک کے ہمارے سہیوگی حسن زیدی نے عام لوگوں کے دل کی بات جاننے کی کوشش کی۔ تو آپ بھی جانے کی چناؤ کو لے کر عام لوگوں کا کیا کہنا ہے، سنیں ایک وشیش رپورٹ۔
صدارتی اور بلدیاتی انتخابات کی تشہیر کا آخری دن ہے، پوسٹرز، بینرز، پلے کارڈ، اجتماعات، انتخابات کی گہما گہمی ہے۔ امیدواروں کے حامی مختلف انداز میں تشہیر کرنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ اس بار کے صدارتی انتخابات میں اقتصادی مطالبات سر فہرست ہیں۔ لوگوں کو توقع ہے کہ
میں ایران کی خاطر کہہ رہا ہوں، جو لوگ ملک کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ حقیقی معنوں میں کام کریں، بہانے بازی نہیں چلے گی۔ اگر نہیں کر سکتے تو بیکار کے وعدے نہ کریں، یہ عمل کا میدان ہے۔
دیکھیے، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم نے 70 سال اسی ملک میں گزارے، انقلاب کیا، اس انقلاب کو چاہتے ہیں، اسی لیے ووٹ ضرور دیں گے۔ لیکن ہمیں توقع ہے کہ جو کوئی آئے وہ عوام کی خدمت کرے، معاشی صورتحال پر توجہ دے۔
بعض لوگوں کو تشویش ہے کہ آیا امیدوار حضرات اپنے وعدے پورے کریں گے یا نہیں، لیکن دوسرے پر امید دکھائی دے رہے ہیں، لوگ امیدواروں کے عملی اقدامات کو پرکھ رہے ہیں۔ یقیناً معیار بھی یہی ہونا چاہیے،
امیدوار کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یعنی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جس پر عمل نہ کر سکے۔ قرآن کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو اگر انسان کی زبان پر جو آ رہا ہو اور جو اس کے دل میں ہو اگر اس میں اختلاف پایا جائے تو پھر وہ صحیح انسان نہیں ہے، ایسے انسان کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔
میں ووٹ دوں گا، اس سے پہلے بھی انتخابات میں شرکت کر چکا ہوں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاتا رہوں گا، لیکن آئندہ 4 سال میں جو کوئی صدارت یا بلدیاتی کونسل کے رکن کے عہدے پر پہنچے، خدا را کام کرے، عوام کی خدمت کرے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ 4 سال کا وقت کم نہیں ہوتا ہے۔
جن سے بات چیت ہوئی ان میں سے زیادہ تر اس بات پر متفق تھے کہ بہتری کی جانب قدم اور تبدیلی کا راستہ انتخاباتی عمل میں حصہ لے کر ہی ممکن ہے۔
ہر معاشرے میں اقتصادی، سماجی، سیاسی مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ترقی یافتہ معاشرے اس کے حل کے لیے انتخابات کا سہارا لیتے ہیں، بیلٹ باکس کا سہارا لیتے ہیں۔ جمعے کے روز ایرانی عوام بھی اپنے اس آپشن کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے۔ سعید حسن زیدی، تہران۔
اور اب چلتے ہیں عراق اور بات کرتے ہیں ایران کے راشٹرپتی پد کے چناؤ کی دھوم کیول ایران میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ایرانی ناگرک متدان میں بھاگ لینے کے لیے اتساہت نظر آ رہے ہیں۔ اس کا ایک ادھارن عراق میں موجود ایرانی ناگرکوں میں چناؤ کو لے کر دیکھا جا رہا جوش ہے۔ کربلا کے بین الحرمین سے آئی آر آئی بی کے سنواددتا جلال خالدی ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسن عباس کی آواز میں۔
عراق میں رہنے والے ایرانی ناگرکوں نے راشٹرپتی چناؤ میں متدان کے لیے اپنی تیاری کی گھوشنا کر دی ہے۔
شرکت
ہم سبھی کو چناؤ میں بھاگ لینا چاہیے کیونکہ راشٹرپتی چناؤ کے پریناموں کا پوری دنیا پر اثر پڑتا ہے۔ ایک دھرم گرو کا کہنا ہے کہ جنتا کا ایک ایک ووٹ اسلامی کرانتی کے دشمنوں کے منہ پر تماچا ہے۔ ہمارے سنواددتا پوتر نگر کربلا اور نجف پہنچے جہاں سب سے زیادہ ایرانی رہتے ہیں۔
خانواده های ایرانی کے موقع میں نجف هستن۔
عراق میں موجود ایک ایرانی ادھیکاری کا کہنا ہے کہ نجف میں موجود سبھی ایرانی متدان کے لیے اتسک ہیں۔
انشاءاللہ کہ مردم در 28 خرداد در انتخابات شرکت کنن و ما هم اینجا۔
ایک انی ایرانی ناگرک کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ جنتا متدان میں بھاری سنکھیا میں بھاگ لے گی، ہم پوتر نگر میں ووٹنگ میں بھاگ لیں گے اور اپنے بھاگیہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے۔
ما ہم انشاءاللہ با تمهیداتی که اینجا برنامه ریزی شده حتما در انتخابات شرکت میکنیم۔
ایک انی ناگرک نے بھی کہا کہ ہم بھی ضرور متدان میں حصہ لیں گے۔ اسلامی گنتنتر ایران کے دوتاواس نے عراق میں موجود ایرانی ناگرکوں کی ووٹنگ کی سویدھا کے لیے اس دیش کے 6 پرانتوں میں متدان کیندر بنائے ہیں۔ بغداد، اربیل، سلیمانیہ، بصرہ، کربلا اور نجف میں کل 14 متدان پیٹیوں کو رکھا گیا ہے۔ ان میں سے 6 متدان پیٹیاں بغداد سہیت سبھی وانجی دوتاواسوں میں رہیں گی، جبکہ 8 موبائل متدان پیٹیاں رہیں گی تاکہ ہر ایرانی ناگرک اس مہتوپورن راشٹریہ پرو میں بھاگ لے سکے۔ اسلامی گنتنتر ایران کی شان اور ایران کے مہان راشٹر کے گورو کے لیے ہمارا سنکلپ ہے کہ 18 جون شکروار کو متدان پیٹیوں تک جانا ہے۔
از منطقی بین الحرمین کربلا، جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما۔
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا اور بات کرتے ہیں بھارت کی بدلتی تصویر کی، کہ جہاں قاتل سڑکوں پر، مظلوم جیلوں میں بند ہیں کیونکہ عدالتوں کے فیصلے کو ٹھینگا دکھا رہی ہے پولیس۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں دلی سے ہمارے سنواددتا شمشاد کاظمی۔
دلی کی نچلی عدالت نے دلی دنگے معاملے میں ہائی کورٹ سے ضمانت پا چکے چھاتر نیتاؤں آصف، نتاشا اور دیونگنا کو تتکال رہا کرنے کا آدیش دیا ہے۔ ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے باوجود رہا نہ کیے جانے پر ان تینوں ابھیوکتوں نے اپنی رہائی کے لیے نچلی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اکت عدالت نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھا تھا جسے آج سنا دیا۔ اس سے پہلے تینوں چھاتروں نے اپنی تتکال رہائی کی مانگ کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا، جس نے چھاتروں کے وکیل کو نچلی عدالت میں جانے کو کہا تھا۔
آج بڑی ایک عجیب طرح کی پروسیڈنگ ہوئی، جس میں نارملی جب ایک بار ہائی کورٹ اوپر کی عدالت یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بیل گرانٹ کر دیتی ہے تو نیچے کی عدالت کو صرف بیسک چیزیں ویریفائی کرنی ہوتی ہیں، جیسے بیل بانڈ فائل ہو گیا ہے اور باقی چیزیں آئیڈینٹیٹی پروف وغیرہ فائل ہو گیا تو وہ ریلیز کر دیتے ہیں۔ لیکن آج جہاں تک میں میڈیا کے تھرو جو پتا چلا ہے کہ اس میں دہلی پولیس نے آبجیکشن لیا کہ انہیں ہمیں 2-3 دن لگے گا ویریفائی کرنے میں، ہمیں آسام جانا پڑے گا راجدھانی ایکسپریس لے کر کے، کیونکہ ایک کوئی پرماننٹ ایڈریس شاید وہاں کا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو آج دلیلیں دی گئی ہیں، یہ مجھے ایک طرح سے ڈیلینگ ٹیکٹک لگ رہی ہے، جبکہ کورٹ کا آرڈر بہت کلیئر ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جب وہ بیل بانڈ فائل کریں اس کے 24 گھنٹے کے اندر انہیں ریلیز کرنا ہے۔
دلی اچ نیالیہ نے ان چھاتر نیتاؤں کو 15 जून को ही जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पेपर वर्क के लिए अधिक समय मांगा था, जिसके कारण ये तीनों छात्र अभी तक रिहा नहीं हो सके थे। हाई कोर्ट ने मंगलवार को सत्र न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें जेएनयू की दो महिला कार्यकर्ता नताशा और देवांगना और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। तीनों छात्रों को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ पुलिस ने फरवरी 2020 में पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा का दोषी बताते हुए UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इन तीनों छात्र नेताओं ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया था। उधर दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत दिल्ली दंगों के एक मामले में आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलीता और नताशा नरवाल को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस ने इस संदर्भ में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए जमानत के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रथम दृष्टिया जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और जेएनयू की दो रिसर्च स्कॉलर देवंगना कलीता और नताशा नरवाल पर UAPA की धारा 15, 17 और 18 के तहत अपराध नहीं बनता। उक्त अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि विरोध करना संवैधानिक अधिकार है और इसे UAPA कानून के तहत आतंकी गतिविधि नहीं कहा जा सकता। पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट का ये मानना गलत है कि वर्तमान मामला असंतोष को दबाने के लिए था। ज्ञात रहे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में दिल्ली में एक लंबे समय तक धरना प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान फरवरी 2020 में पूर्वी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान ही दंगा भड़क उठा था, जिसमें 53 लोगों की जानें चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस दंगे के असली दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें उनके अनुसार सरकार का समर्थन प्राप्त है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की इस सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत में गो रक्षा के चक्कर में इंसानों की हत्या की। हाल ही दिनों भारतीय मीडिया के एक भाग में ये खबर मुख्य रूप से प्रकाशित और प्रसारित की गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनमाने ढंग से गोहत्या कानून का इस्तेमाल करने को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता पर इस कानून को गलत तरीके से लगाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हाईकोर्ट ने यूपी की सीतापुर पुलिस की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए वहां के पुलिस अधीक्षक से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांग लिया। ये मुद्दा प्रिंट मीडिया में भी चर्चा का विषय बना, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसे मुख्य मुद्दा बनाया। अलबत्ता सोशल मीडिया पर इस प्रकार के मुद्दे ज्यादा छा गए।
गोरक्षा के लिए चलाए गए केसों पर यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। उसने यूपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार गोवध निषेध कानून का मासूम लोगों के खिलाफ बेजा इस्तेमाल कर रही है। और क्या कहा कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने गोहत्या और गोमांस की बिक्री के आरोपी रहमुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कमेंट किया। livelaw.in के अनुसार मामला उत्तर प्रदेश गोहत्या निरोधक कानून 1955 के अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 से जुड़ा था। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा, इस कानून का निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। जब भी कोई मांस बरामद किया जाता है तो इसे सामान्य रूप से गाय के मांस के रूप में दिखा दिया जाता है, जांच या फॉरेंसिक लैब के विश्लेषण के बिना ही। अधिकांश मामलों में बरामद मांस को विश्लेषण के लिए नहीं भेजा जाता। अब भी आरोपी ऐसे अपराध के लिए जेल में है जो शायद किए ही नहीं गए, जो 7 साल तक की सजा होने के चलते प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में है।
दिवायर की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अब्दुल मोई की पीठ ने 22 साल के एक किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिनके खिलाफ 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश गोहत्या संरक्षण कानून की धारा 3 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था, ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि गोहत्या के और गोरक्षा के कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी मामले में 3 अन्य इब्राहिम, अनीस और शहजाद के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में केवल इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी कि पुलिस ने आरोपियों को ये कहते हुए कहीं सुन लिया था कि उन्होंने गाय के 3 बच्चों को मारा है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें झाड़ियों में आपस में बात करते हुए सुना था कि उन्होंने 3 बछड़ों को मारा और उन्हें भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ और अब उनके पास 2 बैल हैं और उन्हें भी मारने की योजना बनाई गई है। अदालत के आदेश के अनुसार वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि आवेदक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 बैल, 1 रस्सी का 1 बंडल, 1 हथौड़ा, 1 छोटा गंडासा, 1 बड़ा गंडासा, 1 कील और 5-5 किलो के 12 खाली पैकेट आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए। इसे लेकर सूरज के वकील ने कहा कि महज इस तरह के सामान प्राप्त होने से गोहत्या कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रशासन ने दलील दी कि चूंकि इस तरह के सामान बरामद किए गए, इसलिए इस बात की आशंका थी कि आरोपी बैल को काटने की तैयारी में थे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो बैल की हत्या की गई और न ही उसे किसी तरह की चोट पहुंचाई गई। ये मामला बड़ा अजीब था, इसलिए इस ओर मीडिया का ध्यान केंद्रित होना भी स्वाभाविक था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए 94 मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक यूपी सरकार ने 120 मामलों में NSA लगाया। इनमें 94 पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने NSA लगाने के आदेश को रद्द करते हुए जमानत दे दी और इसे NSA कानून का दुरुपयोग माना। द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस और कोर्ट के रिकॉर्ड की पड़ताल की है, जिसमें एक खास पैटर्न नजर आया है। इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा 41 केस गोकशी से जुड़े हुए हैं, जिनमें NSA लगाया गया है। ये वो मामले हैं जो हाईकोर्ट तक पहुंचे हैं। इसमें एक और खास बात यह है कि इन मामलों में सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी के आधार पर उन पर गौहत्या का आरोप लगाया गया था। इनमें से 70% से अधिक मामलों में 30 केस हाईकोर्ट ने यूपी प्रशासन के लगाए NSA के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की रिहाई के लिए कहा।
हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पुलिस ने केवल इस आधार पर FIR दर्ज कर ली कि उन्होंने आरोपियों के बीच कथित तौर पर गोहत्या के बारे में बातचीत सुन ली थी। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के पास से केवल 2 बैल और अन्य सामान प्राप्त करने से गोहत्या कानून के तहत मामला नहीं बनता। याचिकाकर्ता को 2.5 महीने से भी ज्यादा वक्त उस आरोप में जेल में रहना पड़ा जो प्रथम दृष्टि में उन्होंने किया ही नहीं था। इन दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी और सीतापुर पुलिस अधीक्षक से 2 हफ्तों के भीतर جواب مانگا کہ آخر کیوں اس معاملے میں گوہتیا قانون کے تحت معاملہ درج کیا گیا۔ اس سے پہلے الہ آباد ہائی کورٹ نے یو پی کے گوہتیا سنرکشن قانون کے معاملوں میں پولیس دوارا پیش کیے گئے ساکھیوں کی وشوسنیتا پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس قانون کا دروپیوگ راجیہ میں نردوش لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مانس برآمد ہوتا ہے تو فورنسک لیب میں جانچ کرائے بنا اسے گومانس قرار دے دیا جاتا ہے۔ ادھکتر معاملوں میں برآمد مانس کو جانچ کے لیے لیب نہیں بھیجا جاتا۔ اتر پردیش میں اس پرکار کے معاملے لگاتار ہو رہے ہیں جہاں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے۔ کچھ سپتاہ پہلے کی بات ہے کہ بھارت کے ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے انوسار پشچمی اتر پردیش کے مراد آباد ضلع میں ایک ویکتی کی جان لینے کی نیت سے بڑی بے رحمی سے پٹائی کی گئی۔ پٹائی کرنے والے خود کو گورکشک کہتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پولیس نے آروپیوں کے خلاف کٹھور کارروائی کرنے کے بجائے خود پیڑت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اسے جیل میں ڈال دیا، ساتھ ہی اس پر لیپا پوتی کرنے کی بھی کوشش کی۔ استھانیہ پولیس ادھیکاری پربھاکر چودھری،
بیتی راتری میں ایک ویڈیو پراپت ہوا جس میں ایک ویکتی کے ساتھ جو کہ مانس وکریتا تھے ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ تتکال پربھاؤ سے سنگیان لیا گیا اور جو شکایت پراپت ہوئی اس کے آدھار پہ گمبھیر دھاراؤں میں تھانہ کٹگر میں مقدمہ بھی پنجیکرت کیا گیا ہے۔ اس میں لگ بھگ 5 سے 6 اکیوزڈ ہیں، سبھی کے ورودھ لگاتار ٹیم سکری ہے، دبش دے رہی ہے، شیگھر ان سبھی کی گرفتاری سنشچت کی جائے گی۔
سماجوادی پارٹی کے نیتا ایس ٹی حسن نے بھی اس معاملے میں میڈیا کو بیان دیا۔
پتا یہ چل رہا ہے کہ وہ میٹ لے کے آ رہا تھا اور وہ کسی فیکٹری سے لا رہا تھا، اس کے پاس رسید بھی تھی۔ اس کے میٹ کو یہ بتایا گیا کہ یہ پرتبندھت پشو کا میٹ ہے۔ یہ بہانہ لے کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ یہ تو اوپر والا کرم ہو گیا کہ یہ لڑکا بچ گیا۔
این ڈی ٹی وی کے سنواددتا آلوک پانڈے نے بھی اس معاملے میں جو باتیں بتائیں ان سے کہیں نہ کہیں پولیس کی بھومکا پر سوال ضرور اٹھتا ہے۔
پولیس آر سیئنگ دیٹ دے ہیو اریسٹڈ 4 مین ہو ور انوالوڈ ان اسالٹنگ دس مسلم میٹ ٹریڈر۔ ہاویور اٹ از ناٹ کلیئر ویدر دا مین اکیوزڈ دا سیلف سٹائلڈ لیڈر آف دیز کاؤ وجیلانٹیز سو کالڈ کاؤ وجیلانٹیز ہیز بین اریسٹڈ اور ناٹ۔ اٹ سیمز دیٹ ہی ہیزنٹ بین اریسٹڈ یٹ۔ And while the police did book and file cases against these 6 odd men who carried out the assault, they also filed a counter case on their own against the meat trader who was assaulted. And the case had sections that deal with, you know, lockdown violations, that deal with causing mischief by transporting an animal, etc. Thankfully, these cases are bailable. So while the meat trader was arrested, he was let off on bail from the police station itself. I spoke to a relative of Shakir, the meat trader, and he said that the man was recovering. He was shaken, but he was recovering at home. So thankfully, the incident did not get more serious. But again, what is shocking is the impunity with which this happened. In fact, this so-called cow vigilante, leader of the men who carried out the assault, the police say they are looking for him, or they were at least looking for him, but he was very much in the media limelight all through yesterday. He was also issuing video statements where he said, where he claimed that it was his life was under danger, that he would carry out this so-called good work, is what he said.
اس بیچ اسم کے تنسکیا ضلع کے گاؤں میں بھی اگر بھیڑ نے 34 سال کے ایک ویکتی کی گائے چور ہونے کے سندیہ میں پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی۔ حالانکہ پیڑت کا ساتھی موقع سے بھاگ نکلا۔ तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक देवजीत देवरी ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब दोनों को एक घर में गाय को रखने के लिए बनाए गए शेड के पास देखा गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया है जो मामले की जांच करेगा। विशेष जांच दल ने इस मामले में गांव के 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। देवरी ने बताया कि पीड़ित की पहचान सरत मोरान के रूप में की गई है जो कोरदोई गुड़ी गांव का रहने वाला था। घटना स्थल से फरार व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो सकी। भारत में यह मुद्दा हालिया वर्षों में जब से भाजपा को केंद्र तथा कई राज्यों की सत्ता मिली है बहुत अधिक गंभीर रूप धारण कर गया है। कहा जाता है कि इस प्रकार लिंचिंग करने वालों या कानून का गलत इस्तेमाल करके बेगुनाहों को प्रताड़ित करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती बल्कि किसी न किसी रूप में उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम आज की बात समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सफल महिलाएं।
दोस्तों कार्यक्रम सफल महिलाएं की दूसरी कड़ी लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। अहमद अब्बास और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ने वाली ईरानी महिलाओं से आपका परिचय करवा रहे हैं।
ईरान में असर जदीद नाम से प्रतिभाओं की खोज करने वाला पहला टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया गया जिसमें भाग लेने वालों ने कला, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी विशेष प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। इसमें कई पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। महशहर बंदरगाह की एक प्रतिभाशाली कलाकार फातिमा इबादी ने असर जदीद टीवी कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने इस प्रतिभा प्रतियोगिता के कार्यक्रम में 1500 लोगों के बीच पहला स्थान प्राप्त किया। फाइनल चरण में उन्हें 65,44,964 दर्शकों ने वोट दिया। आज के कार्यक्रम में हम इस युवा महिला ईरानी कलाकार के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे।
फातिमा इबादी पहली बार एक छोटी सी मेज और रेत से भरी एक थैली के साथ असरे जदीद के मंच पर पहुंची। कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था लेकिन उन्होंने रेत से बहुत ही अर्थपूर्ण और सुंदर पेंटिंग बनाई जिसने सभी दर्शकों और प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक कुशल जादूगर की तरह उन्होंने अपनी उंगलियों को ब्रश में बदल दिया और रेत को विभिन्न प्रकार की पेंटिंग का रूप दे दिया। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने शहर की सामाजिक चिंताओं को अपने हाथों से और रेत की मदद से लोगों के सामने पेश किया। रेत के साथ खेलने की अपनी अजीब प्रतिभा के साथ उन्होंने असरे जदीद के मंच पर एक चमत्कार प्रस्तुत किया।
ग्राफिक डिजाइनर और ब्लैक पेंट चित्रकार फातिमा इबादी का जन्म 1368 ہجری شمسی میں خوزستان پرانت کے ماہ شہر میں ہوا تھا۔ انہوں نے گرافک ڈیزائننگ کی پڑھائی کی اور اپنے فائر فائٹر پتی اور ایک 10 ورشیہ بیٹے کے ساتھ اسی شہر میں رہتی ہیں۔ عصر جدید کاریکرم میں فاطمہ عبادی کی جیت کے بعد کچھ اخباروں نے لکھا تھا، عصر جدید کے پہلے سیزن کے فائنل میں ایک ایسی ایرانی مہیلا کی جیت نے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہیں، ایرانی سماج میں مہیلاؤں کی ستھتی کے بارے میں پشچمی دشپرچار پر پانی پھیر دیا، اس لیے کہ پشچمی دیشوں اور سافٹ وار کے روپ میں میڈیا کے درشٹی کون سے فاطمہ عبادی پور میں جو وشیشتائیں ہیں انہیں ایک جگہ جمع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے درشٹی کون کے انوسار ایرانی سماج میں مہیلاؤں کا کوئی استھان نہیں ہے۔ ایک ایسی مہیلا کلاکار کی بات ہی کیا ہے کہ جو ایک پتنی اور ایک ماں دونوں ہی ہیں، ساتھ ہی وہ اپنے سماج کی سمسیاؤں کی اور بہت ہی آکرشک طریقے سے لوگوں کا دھیان کھینچ رہی ہے۔
فاطمہ عبادی کو بچپن سے ہی پینٹنگ میں دلچسپی ہے۔ وشودیالے میں بھی انہوں نے گرافک ڈیزائننگ کے وشے میں پڑھائی کی۔ ریت سے پینٹنگ اس یوا مہیلا کی کلا کا صرف ایک ادھارن ہے۔ پینسل سے پینٹنگ میں بھی انہیں وشیش دکشتا پراپت ہے۔ دیوار پر چترکاری کرنا ان کا ایک دوسرا کوشل ہے۔ مٹی کے برتنوں، لکڑی اور پتھر پر چترکاری بھی اس کلاکار کی وشیش کھمتا ہے۔ وہ کلا کے کئی چھاتروں کو پڑھاتی بھی ہیں۔ عبادی کی انے چترکاروں سے ایک الگ وشیشتا ہے جس سے کلا کی جادوئی دنیا میں انہیں ایک الگ استھان حاصل ہوا ہے۔
عبادی کا کہنا ہے، میں اپنے کام اور ویوہار سے پریم اور مہربانی کو پھیلانا چاہتی ہوں۔ آپ ایک مسکراہٹ سے ایک راہگیر، ایک بچے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ سندرتا اور ارجا کو ساجھا کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ ایشور کی رچنا کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی آپ تک ویسا ہی احساس استھانانترت کریں گی۔
کلا ایک جٹل وشے ہے۔ ودوان کلا کی کسی ایک پریبھاشا پر سہمت نہیں ہے، بلکہ اس کی وبھن پریبھاشائیں کی گئی ہیں، لیکن یہاں مہتوپورن بندو یہ ہے کہ اتکرشٹ کلا وبھن روپوں کو پردرشت کرتی ہے۔ اتکرشٹ کلا ایشور کی ایک دین ہے، اسی لیے ایک پرتیبدھ کلاکار کو چاہیے کہ وہ اپنی کلا سے سماج کا کلیان کی اور مارگ درشن کرے۔ ایک کلاکار کو معلوم ہونا چاہیے کہ سماج کے بھاگے کے نردھارن میں اس کی اہم ذمہ داری ہے۔
ریت کے ذریعے پینٹنگ ایک ایسی کلا ہے جو سامانیہ طور پر شیشے کی سطح پر کی جاتی ہے۔ یہ پینٹنگ کئی لوگوں کو بچپن میں سمندر کے تٹ پر ریت سے کھیل کی یاد دلاتی ہے۔ کبھی کبھی بچے ایک دوسرے کی بھاشا سمجھے بنا گھنٹوں تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، بہت کچھ بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں، اور ریت کی وستویں اور ان کے کھلونے بھاوناؤں کے آدان پردان کی بھاشا بن جاتے ہیں۔
ریت سے اپنی پینٹنگ کی شروعات کے بارے میں فاطمہ عبادی کہتی ہیں، یہ ایک بڑا دلچسپ اور ہنسنے والا واقعہ ہے۔ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ریت سے پینٹنگ کب شروع کی، تو میں کہتی ہوں کہ میں نے نمک سے شروعات کی تھی۔ ہر مہیلا رسوئی میں ایک پرتیبھا حاصل کرتی ہے۔ مہیلا جب رسوئی میں قدم رکھتی ہے اور کھانا بناتی ہے تو وہ خود ایک کلا ہوتی ہے۔ میرا کام واسطو میں نمک چھڑکنے کے ساتھ شروع ہوا۔ میری ماں ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی جو چیز دیکھتی تھی، یہاں تک کہ ٹماٹر کو ایک آکار دے دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک کوئلہ اٹھا کر ہی زمین پر پینٹنگ شروع کر دیا کرتی تھی۔ لیکن گمبھیرتا سے دھول اور ریت سے پینٹنگ نمک سے شروع ہوئی، اور جب میں نے اس دشا میں اپنی روچی دیکھی تو میں اس مارگ پر آگے بڑھتی گئی۔
वास्तविकता यह है कि इस दुनिया के विकास में महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी है और मनुष्य को किसी एक प्रारूप में सीमित नहीं किया जा सकता है। ईरान में भी इस तथ्य को महसूस किया जाता है कि लोग जीवित हैं और अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। वे दुनिया में कहीं भी अपनी कला, क्षमता और पहचान साबित कर सकते हैं। विशेष रूप से ईरानी मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि किसी भी रुकावट को आत्मविश्वास, क्षमता और जोखिम लेने की शक्ति से पार किया जा सकता है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
अंत में मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर पेश है। इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि देश की जनता दुश्मन को मायूस करते हुए एक बार फिर चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ईरान और भारत ने रोटा वायरस का टीका संयुक्त रूप से बनाने का समझौता किया है। इराक के हिजबुल्लाह संगठन ने कहा है कि इसराइल से होने वाली लड़ाई में फिलिस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोका कोला कंपनी को $4 अरब का भारी नुकसान हुआ। आशा है सभा के प्रोग्राम आपको पसंद आए होंगे। आप प्रोग्राम के बारे में अपने विचार हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, hindi@ws.irib.ir। दोस्तों, इसी के साथ ये सभा समाप्त होती है। मोहम्मद अली कुम्मी और साथियों को इजाजत दीजिए। शुभरात्रि, खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔